प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे पे है जोबा, तेरे चेहरे पे है जोबा, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूँ। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूँ। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो न देखूं फिर भला कैसे जीऊं। तेरा चेहरा जो न देखूं फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जोबा, तेरे चेहरे पे है जोबा, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं तलाक के विषय में, जिसे परमेश्वर घृणा करता है। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें और इससे पहले हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम फिर से मलाकी नबी की पुस्तक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, हमारी विनती है प्रभु जी कि अपने वचन के द्वारा आप हम में से हर एक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बोले और बातचीत करें ताकि हम आपके वचन को समझकर उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों तलाक के विषय में देख रहे हैं, मलाकी के समय की बात है। बेबीलोन से स्वदेश लौटे इसराइलियों ने जब वहां की पड़ोसी अन्य जाति सुंदरियों को देखा तो अपनी पत्नियों को तलाक देकर उनसे विवाह कर लिया। इससे परमेश्वर रुष्ट हुआ और उनकी भर्त्सना की। परंतु उनमें परमेश्वर से ही उत्तर मांगने का साहस हुआ कि उन्होंने कब ऐसा किया। परमेश्वर ने विवाह की स्थापना की थी और विवाह को तोड़ने वाला परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है। आज का विचार है कि तलाक का कारण यौन शिक्षा की कमी है, परंतु यौन शिक्षा भी तलाक का समाधान नहीं है और नहीं खोज पाई है। तलाक की हर दिन की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परमेश्वर का वचन तो यौन विषय को सीधा, स्पष्ट और निर्भीकता के साथ व्यक्त करता है। बाइबल में ना तो इसे अछूत का विषय, न ही वर्जित विषय, न ही सैद्धांतिक विषय माना गया है, परंतु यह सीधा एवं अत्यधिक जरूरी विषय है। बाइबल स्पष्टवादी है और ऊंची और उत्कृष्ट भाषा में इसकी चर्चा करती है। यही कारण है कि हम मलाकी की पुस्तक के अध्ययन में इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर उन्हें झिड़कते हुए कहता है कि उनका बेबीलोन की बंधुआई में जाना और अन्य जातियों में तीतर बीतर होने का एक कारण यह भी था। मेरे विचार में आज परमेश्वर की वाणी सुनने का समय आ गया है। जी हाँ, प्रवचन मंच से इस विषय की चर्चा किए वर्षों बीत चुके हैं, परंतु इसे उचित स्तर पर व्यक्त किया जाना अति आवश्यक है। आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को स्त्री पुरुष करके बनाया था। परमेश्वर ही ने आदम को स्त्री लाकर दी थी, और मेरे विचार में परमेश्वर ने आवश्यक नहीं समझा कि आदम को आदम की तरह ही कोई व्यक्ति दे। इस विषय में अधिक भाषण की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनका विवाह पावन, पवित्र और शुद्ध हुआ। मेरे मित्रों, मेरे विचार में स्त्री और पुरुष का एक यही संबंध है जिसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर आशीष देता है। उसने और किसी को आशीष देने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। वह कहता है कि यदि विवाह उसकी योजना के अनुसार है तो वह आशीष देगा और पारिवारिक जीवन आनंदित होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान सुखी विवाहित जीवन जिए। उसके पास हम में से हर एक के लिए एक योजना एवं उद्देश्य है, परंतु तब जब हम उसकी वाणी सुने। प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया को कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जी हाँ, जबकि इफिसुस की कलीसिया अपने आप में बहुत ही अच्छी थी, तब से आज तक कलीसिया आत्मिकता में उच्च स्तर पर बढ़ गई है। यहां कहें कि उच्च स्तर को प्राप्त अभी नहीं कर पाई है। आज अधर्म के इस शिथिल युग में हमारे लिए आरंभिक कलीसिया के ऊंचे मसीही संबंधों की कल्पना करना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु के साथ आरंभिक कलीसिया का यह व्यक्तिगत संबंध पवित्र आत्मा का कार्य था। आरंभिक कलीसिया के विश्वासी प्रभु यीशु से अत्यधिक प्रेम रखते थे और उनमें से 50 लाख विश्वासियों ने शहीद होकर प्रभु के लिए अपने इस प्रेम पर अपने लहू की मुहर लगा दी थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:4 के अनुवाद में मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। पहला सा प्रेम, इसमें पहला का मूल अर्थ है सर्वोत्तम। यह वही शब्द है जिसका प्रयोग प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत में किया था कि उड़ाव पुत्र के पिता ने उससे अपना लिया, अच्छे से अच्छा वस्त्र मंगवाया। किसके लिए? उड़ाव पुत्र के लिए। अतः इफिसुस की कलीसिया से वह कहता है अच्छे से अच्छा प्रेम समाप्त हो जाने की शिकायत कर रहा है। उससे ऊंचे स्तर की आत्मिक कलीसिया में प्रभु के लिए जो अच्छे से अच्छा प्रेम था वह समाप्त नहीं हुआ था, परंतु कम होता जा रहा था। मेरे प्रियो, उद्धार एक प्रकार का प्रेमालाप है। प्रभु यीशु हम सबसे एक प्रश्न पूछता है, क्या तो मुझसे प्रेम रखता है? देखिए, उसका प्रश्न यह नहीं है क्या तो विश्वास योग्य रहेगा या क्या तू प्रचार क्षेत्र में जाएगा। वह यह भी नहीं पूछता कि तू कितना दान देगा या कितना काम करेगा। वह बस एक ही बात पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? इसके बाद वह कहेगा कि आपको उसकी आज्ञा मानना है और आपको कुछ करना भी है। प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसने रूत पर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को लिखने में प्रेम उद्देश्य यह दर्शाना है कि पापों से उद्धार एक प्रेम कथा है। परमेश्वर ने 2 साधारण मनुष्यों को लिया, एक बलवंत ओजपूर्ण पुरुष और एक सुंदर एवं सत्य चरित्र स्त्री, और उनकी कहानी सुनाई। इस कहानी में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने महान प्रेम का बोध करवाया है। इस विस्मयकारी तथ्य को हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने यह उपाय काम में लिया था। अतः उद्धार एक प्रेम कथा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस की कलिसिया को लिखे प्रभु यीशु के अंतिम पत्र में वह चेतावनी देता है। इसे समझना हमारे लिए कठिन है। मैं 40-50 वर्ष पूर्व उसके प्रथम पत्र से संदर्भ देना चाहता हूँ, जिसे पौलुस ने लिखा था, जिसमें वह विवाहित प्रेम और कलिसिया के लिए प्रभु यीशु के प्रेम में तुलना करता है। यह परमेश्वर के वचन का सबसे अधिक भ्रम उत्पादक अंश है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 22 पद में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। वर्षों तक कुछ अधिकार प्रकट करने वाली स्त्रियों और नारी मुक्ति मोर्चा ने इस पद का विरोध किया, परंतु इससे रुष्ट होने का अर्थ है इसके निहितार्थ से चूकना। अधीन रहने का उद्देश्य था परिवार में मुखिया का मान बढ़ाना, न कि दूसरों पर प्रभुता दर्शाना, जिससे कि परिवार में व्यवस्था बनी रहे। मेरे मित्रों, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और भी है जो वास्तव में एक अनुपम चित्रण है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 23 पद में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलिसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यहां आप देख सकते हैं कि यह मसीह और कलिसिया की समानता में है। अतः प्रभु यीशु की अधीनता में सांसारिक विवाह मसीह और कलिसिया के संबंधों का लघु चित्रण है। मसीही विवाह मसीह और विश्वासी के अद्भुत संबंध को रूपरेखा के रूप में देता है, एक नमूना है। अतः मसीही विवाह और मसीह एवं कलिसिया के संबंध अति पवित्र हैं। अब आप कृपया ध्यान से सुने, विवाह का यह संस्कार पवित्र है। यह एक धार्मिक संस्कार है, यह सांसारिक निष्ठा है। यह ना तो मनुष्य द्वारा स्थापित संस्कार है और न ही कलिसिया द्वारा प्रतिपादित विधि है। यह स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है। परमेश्वर इसे पवित्र ठहरा कर कहता है कि यह संबंध तुम्हारी आत्मा के लिए प्रभु यीशु का जो प्रेम है उससे प्रकट करता है। अतः पुरुष में स्त्री उस व्यक्ति को देखे जिसके लिए वह महिमामय त्याग के द्वारा अपने आप को अधीन कर दे। वह पूर्ण रूप से और सर्वांग समर्पण करके उस पुरुष में अपनी परिपूर्णता और संतोष देख पाए, क्योंकि वह पुरुष उसके लिए है। वह अपने पति में उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके अनुराग में आनंद का अनुभव करती है, और उसके लिए वह पुरुष मानव जाति में सर्वप्रथम और मुख्य ही नहीं, उसकी दृष्टि में सब कुछ है। उसका हार्दिक प्रेम केवल उसी के लिए है। वह उसका छोटा सा संसार, उसका स्वर्ग, उसका सबसे मूल्यवान धन कोष है। वह उसके व्यक्तिगत, या यूं कहें कि उसके व्यक्तित्व में वह विलीन हो जाने में अति प्रसन्न है। वह अपना सर्वाग्य त्यागने को तैयार है। उसका मान सम्मान अपनी पत्नी पर प्रकट होता है, जिसमें वह प्रसन्न होती है। वह अपनी अंतिम सांस तक उसके नाम की रक्षा करती है। जहां वह उसकी चर्चा करे वहां वह सुरक्षित रहता है। वह जिस एकमात्र प्रतिफल की आशा रखती है वह उसकी मुस्कुराहट भरी आभा रोकती है। अपने वस्त्र पहनने में भी वह उसका ध्यान रखती है और उसकी अरुचि के निमित्त वह सुंदरता को भी कुछ नहीं समझती है। उसके जीवन में अनेक लक्ष्य हैं, जिनमें से कुछ को वह समझ नहीं पाती है, परंतु उनमें विश्वास रखती है, और यदि वह उनमें से एक को भी बढ़ावा दे सके तो अति आनंदित होती है। ऐसी पत्नी सच्ची जीवन साथी आदर्श विवाह को सिद्ध करती है और प्रकट करती है कि प्रभु यीशु के साथ हमारी एकता कैसी होना चाहिए। प्रिय मित्रों, सच्चे मसीह विवाह में यह पत्नी का रूप है। पुरुष अपनी पत्नी में अपनी उपासना के पात्र को देखे। अब कोई पूछेगा, आपका कहने का अर्थ है कि पत्नी की आराधना करें? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। आराधना का अर्थ क्या है? आराधना का अर्थ है किसी के योग्य सम्मान व्यक्त करना। यदि आप विवाह के प्राचीन संस्कार को देखें तो दूल्हा कहता है, मैं अपने देह से तेरी आराधना करूंगा, अर्थात वह उसमें सब कुछ मूल्यवान देखता है। वह उससे इतना अधिक प्रेम करे कि उसके लिए अपनी जान तक दे दे। बाइबल अति स्पष्ट वादी है और मैं समझ नहीं पाता कि हमें स्पष्ट कहने में क्यों लज्जा आती है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में आप दूल्हे का चित्रण देखते हैं और उसकी दुल्हन के प्रति उसके विचार सुनते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 4:7 में और 2:2 में वह कहता है, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। जैसे श्वसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। क्या यह भाव व्यक्ति नहीं है? यह दुल्हा कहता है, परंतु दुल्हन भी कम नहीं है। आप उसकी भी सुने। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2:16 में, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सर्वोच्च एवं मधुर भावावेश में पत्नी अपने पति को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है या उसे नरक की गहराई में गिरा देती है। पति भी उसे या तो उपासना की वेदी पर बैठा सकता है या उसके साथ निर्दयता का व्यवहार करता है। यदि ऐसा हो तो वह उसके प्रेम का सत्यानाश कर देगा। परिणाम स्वरूप वह उससे घृणा करेगी और शिथिल एवं उदासीन हो जाएगी। परामर्श में हम देखते हैं कि विवाह के टूटने का एक मुख्य कारण यह भी है। मेरे प्रियो, किसी डॉक्टर का कहना है, निरुद्देश्य और असंतुष्ट होना शारीरिक और मानसिक रोग का सर्वसाधारण कारण है। इसके कारण अनेक विवाहित जीवन टूट रहे हैं। पत्नी असंतुष्ट एवं निराश हो जाती है, वह शीघ्र उत्तेजित हो जाती है, वह मन के दुख से पीड़ित रहती है और वह बात बात पर झिड़कने लगती है और पति औसत जीवन जीना आरंभ कर देता है। वह या तो अकेला रहना चाहता है या पत्नी का दास बन जाता है या फिर वह पाशविक स्वभाव अपना लेता है। हमारे समाज में दोनों ही पाए जाते हैं। मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी स्त्री हैं जिसका पति आपके लिए अपनी जान निछावर कर दे? अब मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसी स्त्री हैं जो हर एक पुरुष पर दृष्टि डालती हैं, तो चाहे आप कैसा भी श्रृंगार कर लें, आपके लिए कोई भी पुरुष जान निछावर नहीं करेगा। यदि आप में चरित्र का सौंदर्य, आत्मा की उदारता नहीं है, तो आप बिना गर्मी की जलती हुई लौ हैं, बिना रंग का इंद्रधनुष, सुगंधहीन फूल हैं। परमेश्वर का वचन श्रृंगार की चर्चा करता है। बाइबल इसका विरोध नहीं करती है। हमें यथा संभव अच्छे से अच्छा दिखने का प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा दी गई सुंदरता को निखारें। स्त्री अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने तो इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु परमेश्वर बाहरी दिखावे की अपेक्षा मन की दीनता और विनम्रता पर ध्यान देता है, जो भीतरी श्रृंगार है। परमेश्वर के लिए यह बहुमूल्य है। पत्रस कहता है, 1 पत्रस 3:3 में, तुम्हारे श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अब युवकों, क्या आप वह पुरुष हैं जिसके लिए स्त्रियां पृथ्वी की छोर तक पीछे पीछे आए? आप चाहे अति रूपवान एवं आकर्षक पुरुष हो, परंतु आपके जीवन में उद्देश्य ना हो, महत्वाकांक्षाएं ना हो, परमेश्वर की सेवा का मन ना हो, गहन एवं ऊंची बातों के लिए क्षमता ना हो, मन में उपलब्धि की लालसा ना हो, तो स्त्रियां अधिक दूर तक आपके पीछे नहीं आएंगी। वह आपके साथ विवाह का प्रमाण पत्र लेने आ जाएंगी, परंतु शीघ्र ही तलाक पत्र देने के लिए भी पहुंचेंगी। मेरे प्रियो, मैंने एक मूर्ति देखी जिसमें एक माता के बच्चे उसके वस्त्र पकड़े हुए हैं। वह न तो किसी मनोवैज्ञानिक के पास गई और न ही किसी विवाह के परामर्शदाता के पास गई। आप जानते हैं कि वह किसी प्रचारक के पास अपने टूटते विवाहित जीवन के संबंध में क्यों नहीं गई? क्योंकि एक दिन एक पुरुष उसके पास आया और बोला, मैं अपना भविष्य एवं परिवार बनाने बाहर जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ आएंगी? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह पुरुष उसकी रक्षा करेगा जैसे उसने पहले की थी। उसके प्रेम के बारे में उसे कोई संदेह नहीं था, वह भी उसके विश्वास योग्यता पर संदेह नहीं करता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ऐसे लोग देश का निर्माण करते हैं, परंतु देश के विनाशकों को देख मुझे भी दुख होता है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि कोई मन में कह रहा होगा, प्रचारक साहब मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूं, मैं बड़ा नायक नहीं हूं। हे जवानों, परमेश्वर ने नहीं कहा है कि प्रत्येक युवक या युवती आपको प्रेम करेगी। 100 में से 99 युवतियां आपको एक पड़ोसी गंदा लड़का समझकर आगे बढ़ जाएंगी, परंतु एक दिन कोई स्त्री आप में एक योद्धा को देखेगी जो चमकता हुआ कवच पहना है। परमेश्वर ही है जो एक निश्चित पुरुष और एक निश्चित स्त्री में रसायनों को उत्प्रेरित करता है। अब कोई युवती कहेगी, मैं ना तो चेहरे से और ना शरीर से आकर्षक हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप हर एक पुरुष को आकर्षित करेंगी? यह काम तो केवल पशुओं का है। 99 युवक आपको देखकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वे आपको हड्डियों का ढांचा और जटाधारी समझेंगे, परंतु एक पुरुष ऐसा होगा जो आपसे प्रेम करेगा। आप उसकी प्रेरणा का स्रोत होंगी, आप उसे महान होने की प्रेरणा देंगी कि वह पुस्तक लिखे, कविता लिखे या संगीत रचना करे या चित्र बनाए या प्रचार करे। यदि आप उसकी प्रेरणा हैं, तो न तो उसे अनदेखा करें और न ही उससे दूर भागें। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से एक साथ किया है, वह आएगा। शायद आप सोच रहे होंगे, प्रचारक महोदय, आप कल्पना के संसार में हैं, आज जो कह रहे हैं वह हवाई किले हैं, यह कहानी की पुस्तक में ही अच्छा लगता है, जीवन में ऐसा नहीं होता है। मेरे प्रियो, आपका कहना गलत है, ऐसा होता है। महान टीकाकार मैथ्यू हेनरी प्रेम रोगी नहीं था, परंतु जब वह लंदन आया तब उसकी भेंट एक कुलीन परिवार की युवती से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। उस युवती ने अपने पिता को इसकी सूचना दी। पिता ने उससे पूछा कि क्या वह उसके बारे में कुछ जानती है, कि वह कहां से आया है। पुत्री ने उत्तर दिया, पिताजी आपका कहना उचित है, मैं उसके बारे में नहीं जानती कि वह कहां से आया है, परंतु यह जानती हूं कि वह कहां जा रहा है, और वह उसके साथ चली गई। इसी प्रकार एक महान उपन्यासकार नथानियल हरथोने को अयोग्यता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। वह घर आकर उदास बैठ गया। उसकी पत्नी उसके आगे कागज और पेन रखकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, अब आप वह काम कर सकते हैं जो सदैव करना चाहते थे। अब आप लिखने का काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, उसकी पत्नी उसकी प्रेरणा थी, उनका प्रेम अनंत था। उसके मरणोपरांत उसकी पत्नी ने अंतिम पत्रों में से एक में उसने अपनी महान आशा व्यक्त की जो उसके दुखों में सांत्वना का लंगर थी। मेरे प्रियो, उसने लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त है कि उसे अधिकाधिक जान पाऊं, अन्यथा मैं निराशा में ही मर जाती। आप कहते हैं कि मैं कल्पना की बात करता हूं, मैं सत्य की चर्चा कर रहा हूं। आइए हम आरंभ में चलें, आदम और हवा पर ध्यान दें। उनका जीवन प्रेम कथा था। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 28 से 31 पद में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। मेरे श्रोता मित्रों, क्या आज आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने पति से प्रेम करते हैं? परमेश्वर कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। विवाह का अर्थ यही है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आपके परिवार की रक्षा करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं हूँ माटी पल दो पल का, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ। मैं हूँ माटी पल दो पल का, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ। तेरे चेहरे पे है जोगार, तेरे चेहरे पे है जोगार, होठों से कह